एक सवाल करना चाहता हूँ। ऐ नेक उस्ताद, इसमें कोई शक नहीं कि आप मुकद्दस और सच्चे इंसान हैं। ये बताइए कि खुदा वंदे करीम और रहीम ने अपनी जन्नत में हम खादमाने शरीयत के लिए कौन सा सवाब मुअय्यन किया है?
उन लोगों से बचो जो तुमको सिर्फ जबान से बरकत वाला कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हें इस तरह धोखा देते हैं जिस तरह शैतान ने हमारे पहले माँ बाप आदम और हव्वा को धोखा दिया है। तुम, हाँ तुम, क्या तुमको नहीं मालूम कि खुदावंद पाक के अलावा कोई सालेह नहीं है? खुदावंद आलम ने अशिया नबी में बिला वजह नहीं फरमाया था, ऐ मेरे बंदो, वो जो तुम्हें सिर्फ जबान से बाबरकत कहते हैं वो दरअसल तुम्हें धोखा देते हैं। ऐ काहिनों और फरीसियों, चूंकि तुम लोग खुदा की शरीयत के मुताबिक अमल नहीं करते हो और जन्नत के दरवाजों को खुदा के बंदों पर बंद करते हो, ना तो तुम खुद ही उसमें दाखिल होते हो और ना ही किसी और को उसमें जाने देते हो, इसलिए तुम पर अफसोस है। है अंधे रहनुमाओं, है काहिनों, तुम्हारी बातों का जवाब देना जरूरी है। तुमने मुझसे पूछा कि खुदा वंदे आलम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कयामत में क्या सवाब देगा, तो सुनो, जो लोग पैसों के लालच में काम करते हैं वो काम लेने वाले से भी मोहब्बत नहीं करते। ऐ काहिनों और फरीसियों, खास तौर पर सुतून के पीछे छिपकर मेरी आवाज़ सुनने वाले काहिनों के सरदार, ये जान लो कि खुदा वंदे आलम ने अशिया नबी के जरिए जो बात कही मैं उसे आश्कार कर रहा हूँ। खुदा ने फरमाया कि मैंने जिन बंदों की परवरिश की और जिन्हें शान और अजमत दी उन्होंने मुझे रुस्वा किया।
सहीफा अशिया में मौजूद खुदा की बातों का मेरे सवाल से क्या ताल्लुक बताएं?
क्या ताल्लुक है? तुम मुझे बताओ कि खुदा के इतने रहम और करम के बदले बनी इसराइल ने क्या किया? उन्होंने कितने पाक तीनत पैगंबरों को कत्ल किया? उन्होंने अम्र नबूवत को कितना खराब किया? उन्होंने इलाही शरीयत के अहकाम की कितनी नाफरमानी की? तुम काहिनों के गुनाहों की वजह से कितने ही लोग दीन छोड़कर बुतपरस्त हो गए? वाए हो तुम लोगों पर कि अपने घटिया आमाल से हुक्म खुदा के इस कदर तौहीन करते हो, इसके बावजूद मुझसे पूछते हो कि खुदा तुम्हें जन्नत में क्या देगा?
ऐसा हमें बताओ ऐ ईसा कि किस कानून और शरीयत में आया है कि नर्म और अच्छी बातों का जवाब तल्ख लहजे में दिया जाए? हाय,
खुदा की कसम, तुम मुझसे हरगिज चापलूसी की बातें नहीं सुनोगे और मैं तुम लोगों से हक के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब तौबा कर लो और खुदा की तरफ पलट आओ जिस तरह तुम्हारे आबाओ अजदाद ने किया। अपने दिलों को सख्त ना करो।
खुदावंद आलम के जलाल की कसम कि मैं इस शख्स की एक भी बात समझ नहीं पा रहा हूं। ऐ ईसा, क्या तुम्हारी नजर में हम काहिन और फरीसी लोग खुदा और उसकी मखलूक से बेखबर हैं?
हकीकत में तुम लोग ऐसे सवारों की तरह हो जो के तेज रफ्तार घोड़ों में तो दिलचस्पी रखते हो लेकिन राह खुदा में जंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। तुम लोग उन औरतों की तरह हो जो कि अच्छे कपड़ों को तो पसंद करती हैं लेकिन इस उम्मत के यतीमों से कोई हमदर्दी नहीं रखती हैं। तुम काश्तकारों की फसलों से तो दिलचस्पी रखते हो लेकिन उनकी मदद करने से गुरेज करते हो। तुम मछली के लजीज गोश्त को तो बड़े शौक से खाते हो लेकिन मछली के शिकार में माहीगीरों की जहमतों और तकलीफों में शरीक होने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हो। तुम लोगों को उन बेचारों के थैलों से पैसे निकलवाने में बड़ा मजा आता है लेकिन खुदा के बंदों की खिदमत में कोई दिलचस्पी नहीं। अब तुम मुझे बताओ कि ऐसी हालत में खुदा तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम लोग इस दुनिया में बगैर परेशानी के हर सहूलत को हासिल करना चाहते हो, बेशक खुदा तुम्हें रोज़े जज़ा ऐसी जगह देगा जहां सहूलत के सिवा सिर्फ परेशानी ही परेशानी होगी। जो लोग इब्रत और नसीहत ले सकते हैं वो तुमसे इब्रत लें।
आदाब अर्ज करता हूँ, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ?
जलीली काहिन कहाँ है?
हुजूर वहाँ है, तशरीफ लाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। तशरीफ लाएं, हुजूर वहाँ इबादत खाने में है, तशरीफ लाएं। इधर तशरीफ लाएं।
ऐ जलील के काहिन, मेरा तुमसे एक सवाल है जिसका जवाब तुम्हारी जुबान से मैं यहीं इसी जगह सुनना चाहता हूं। क्या तुम जंग की आग भड़काना जायज समझते हो, हां या नहीं?
हमारा दीन हमें बताता है कि हमारी पूरी जिंदगी एक जंग है।
मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, क्या तुम हमें अपने दीन की तरफ दावत दे रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये चाहते हो कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर तुम्हारे एक खुदा की पैरवी करें, उस खुदा की जो हर जगह है और आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। हो सकता है कि असल में वो हो ही नहीं।
अगर अपने और तुम्हारे बेमिसल खुदाए वाहिद की तरह मैं भी खल्क कर सकता होता तो यकीन करो कि तुम्हें तुम्हारी मौजूदा खिलकत से हटाकर किसी और मखलूक में तब्दील कर देता।
ताज्जुब है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बेहतर तजवीज देता हूं। तुम अपने खुदा को हमें दिखा दो, शायद हम भी यहूदी हो जाएं।
अगर तुम्हारे दिल की आंखें देख पाती तो उसका जलवा तुम्हें दिखाता, लेकिन अब जबकि तुम अंधे हो और उसे नहीं देख पा रहे हो तो मैं कैसे उसका जलवा तुम्हें दिखाऊं?
तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि लोगों के बेपनाह एहतराम ने तुम्हारी अक्ल को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तुम ये देख रहे हो कि हम सबके चेहरे पर दो आंखें मौजूद हैं, फिर भी तुम ये कह रहे हो कि हम नाबीना हैं।
तुम्हारी जाहिरी आंखें सामने की चीजों के अलावा कुछ नहीं देख सकती हैं। इसी वजह से तुम लकड़ी के खुदाओं के अलावा के जो किसी काम के नहीं हैं, किसी और चीज के देखने की सलाहियत भी नहीं रखते हो।
होश में रहकर बातें करो, ख्याल रखो कि मुझसे किस तरह की बात कर रहे हो। हमारे खुदा कादर मुतलक है और हर चीज पर अख्तियार रखते हैं।
जैसा कि तुम कह रहे हो, तुम्हारे खुदा हर चीज पर कुदरत रखते हैं। मैं तुम लोगों से माजरत चाहता हूं, लेकिन यहां बातों की जरूरत नहीं है बल्कि अमल मुनासिब है। ठीक है, तो अपने खुदाओं से अभी दरख्वास्त करो कि एक मामूली सी मक्खी को खल्क कर दें।
Ha 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 ha
जब तुम्हारे खुदा एक मामूली सी मक्खी को पैदा करने की ताकत नहीं रखते, तो मैं ऐसे खुदाओं के लिए उस एक खुदा को भी नहीं छोड़ सकता कि जिसने एक कल में से पूरी कायनात को खल्क किया है, वही खुदा के जिसका सिर्फ नाम ही पूरे के पूरे लश्कर को दरहम बरहम कर देता है।
गिरफ्तार कर लो इसे।
इताद, इताद हुजूर।
मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसे गिरफ्तार करो।
फंस गई है, बाहर नहीं निकल रही है।
लश्करों को पालने वाले, मेरी मदद फरमा।
खामोश हो जा। हम लोगों ने भी देखा है कि क्या हुआ है। इसने इस काम को शैतान के जरिए किया है।
जनाब, वजह फरमाया आपने, मैं भी यही कहना चाहता।
जनाब, रूबेन ने ठीक कहा है। एक तजवीज है। जलील के उस जादूगर ने इबादतगाह पर भी जादू कर दिया है। हमें उसकी काट करनी होगी। आज रात ही पूरे माबत को सलबाम के मुकद्दस तालाब के पानी से पाक करना होगा।
रोम की सेनेट, सन 32 ईस्वी।
ये एक ऐसा मौजू है कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और ना ही आसानी से।
मद्देनजर रहे कि ऐसे हालात में पूरी तरह से एहतियात करनी पड़ेगी।
ठीक है।
बेशक सेनेटर, इस बात को ना भूलिए कि शहंशाह के हुक्म के मुताबिक रोम के शहर के अंदर फौज की छावनी नहीं है।
वहाँ नहीं था
तो आप क्या करने का इरादा है?
पता नहीं,
इसलिए नहीं जानते कि बयान नहीं करना चाहते हो?
नहीं भाई।
मेरे दोस्त, फौज तो नहीं है लेकिन हिफाजती दस्ता जरूर है।
शहंशाह का हिफाजती दस्ता?
क्यों नहीं, मुहाफिज किसी से डरते नहीं और हमेशा अपने वली नेमत के वफादार रहते हैं, चाहे वली नेमत कैसा ही क्यों ना हो। हाँ, उनका दिल जीतने के लिए वक्त और पैसा जरूर खर्च करना पड़ता है।
लेकिन शहंशाह?
शहंशाह?
बिल्कुल, इस बात को ना भूलो कि सेनेट की मौजूदा परेशानियों में से एक शहंशाह भी है।
या तो वो सेनेट के हक में गैर जानिबदार रहेगा, या उसको ऐसी जगह भेज देंगे जो सजानूस कहेगा। मेरे दोस्त, हिम्मत से काम लो, सब्र व ज़ब्त का मुजाहिरा करो। अभी सजानूस के सामने पहुंचकर आज के जलसे का आगाज करते हैं, उसका बस यही एक रास्ता बचा है।
हाँ, यही बेहतर है। बहरहाल जलसे के नतीजे का इंतजार करना होगा।
सेनेट को ऐसे वक्त में
जरूर फैसला करना चाहिए।
अलबत्ता मुझे इस वक्त कुछ बेहतर उम्मीद है।
ठीक है।
मौजिज़ हजरात, रोम के शहंशाह तैबरियूस के नामे नामी और रोम की अजीम शान सेनेट की बरकत से मैं जलसे के बाकायदा शुरू होने का ऐलान करता हूँ। मुंशी साहब, आज के जलसे के मौजूआत पढ़कर सुनाएं।
पहला मौजू,
آشور اور بین النہرین کے علاقوں میں فول میناتا کی 12ویں بٹالین کے اعلیٰ کمانڈر کے نمائندے پروکنسول آنتونوس فلکس کی شکایتوں کی سماعت ہے۔ پروکنسول فلکس، سینیٹ آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے۔
صدر محترم اور سینٹ کے معزز ممبران، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مجھے مجبوراً سینٹ کا بہت قیمتی وقت لینا پڑا، اور اسی طرح سینٹ کے معزز ممبران،
برائے مہربانی موضوع سے باہر نہ جائیں۔
عالی مقام روسس عالی سجانوس، کتنے فخر کا مقام ہے۔ میں اپنی طرف سے اور تمام محترم سینیٹروں کی طرف سے آپ کے حضور میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میں اپنی عقیدت کا اور اسی طرح تمام سینیٹروں کی عقیدت کا۔
محمد صاحب، تمہاری حد سے زیادہ چاپلوسی کبھی کبھی اکتاہٹ کا سبب بنتی ہے۔ پروکنسول، اپنی بات جاری رکھو۔
میں آج یہ کہنے آیا ہوں کہ روم کے اقتدار کے حدود میں ریاست فلسطین کے حالات خطرناک ہیں اور ہمارے پروکریٹور کے قابو سے باہر ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ایک شریف شہری اور لائق جان اثار کمانڈر کی دن دہاڑے توہین کی جا رہی ہے۔ اس شرمناک توہین کو ایک شریف اور آزاد شہری برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ میری باتوں پر آپ غور فرما رہے ہوں گے۔ اگر روم کی سینٹ میری حیثیت کو لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتی تو مجبوراً مجھے اسی وقت آشور اور بین النہرین کے شہنشاہیت کی فوجی کمانڈری کا حکم نامہ سینٹ کے سامنے لوٹانا پڑے گا۔
جناب سدھنوس،
یروشلم کی عبادت گاہ میں میرے اور میرے ساتھیوں کا کھلم کھلا مذاق اڑایا گیا، اور یہاں تک کہ ہم پر حملہ بھی کیا گیا، اور یہ سب ایک جادوگر کی وجہ سے ہوا جسے کہ وہاں کے لوگ جلیل کا پیغمبر کہتے ہیں۔
فلسطین تو تمہاری بٹالین کی نگرانی کے تحت نہیں آتا ہے، وہاں کی ذمہ داری تو جنرل پلاتیس کے کاندھوں پر ہے۔ تمہارے ولی نعمت جنرل آنتونوس کے اوپر نہیں۔
لیکن ہم یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں کی درخواست پر وہاں گئے تھے۔
تم نے کہا کہ یروشلم میں مخصوص فوجی دستے کو یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں کی درخواست پر بھیجا گیا تھا، جبکہ وہ تمہاری چھاونی کی حدود سے باہر کا علاقہ ہے، نہیں کہا؟ تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ جلیل کے جادوگر یا وہ جو کچھ بھی ہیں ان کی باتوں کی بجائے عظیم الشان محل بلکہ عظیم الشان عبادت گاہ کے بارے میں ان معزز سینیٹروں کو کچھ بتاؤں؟ کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ البتہ شہنشاہ کے خاص جاسوسوں نے اس سے پہلے بھی کئی بار تمہارے اور تمہارے قدر شناس جنرل بیتریوس کے درمیان موجود گہرے تعلقات کی خبر دی ہے، اور فلسطین میں امن و امان قائم رکھنے کے سلسلے میں تمہاری کوششوں اور وہاں کے مقدس خزانوں میں موجود سونے چاندی کے انباروں کی تفصیل بیان کی ہے، کیا تم اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے؟
جناب پروکنسول، مہربانی کر کے اس بابرکت عبادت گاہ سے متعلق ہمیں مزید بتائیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ موضوع دل انگیز لمحات اور ہمارے دلی جذبات سے زیادہ قریب ہے۔ جس سوال نے میرے ذہن کو پریشان کر رکھا ہے شاید تمام معزز سینیٹروں کو بھی گدگدا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہیکل سلیمان کی سالانہ آمدنی کتنی ہوگی؟
یروشلم کی عبادت گاہ کی سالانہ آمدنی 10,000 تالانت سے بھی زیادہ ہے۔
تعجب ہے،
یہ رقم تقریباً پکے حساب کے مطابق ہے۔
کتنی زیادہ آمدنی ہے؟
اس دولت میں اس سمندر سے شہنشاہ کا کتنا حصہ ہے؟
پیچیدہ مسئلہ تو یہی ہے کہ کسی کو بھی صحیح سے نہیں معلوم کہ ان کا سالانہ حصہ کتنا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔
ابھی کچھ دیر پہلے ہی تم نے یہودی عبادت گاہ کی سالانہ آمدنی 10,000 تالت بتائی تھی، کیا ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں؟
میں نے تو سالانہ آمدنی کی کم سے کم مقدار بتائی تھی، اور یہ جو مقدار تھی وہ بھی تقریباً ایک اندازے کے مطابق ہی تھی۔ اس سلسلے میں سلطنت کے تمام مالی امور کے عہدے داروں کا حساب کتاب تخمینی اور اندازوں پر ہی ہے، مطلب یہودی کاہنوں کی شورا نے اصل حساب کو چھپا رکھا ہے۔ انہوں نے جعلی حساب بنا کر عبادت گاہ کی ساری دولت کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ فی الحال فلسطین کی بد امنی میں امن و امان کا نہ ہونا اس عظیم دولت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور جب سے فلسطین میں اس نئے پیغمبر کا وجود ظاہر ہوا ہے عبادت گاہ کی آمدنی اچھی خاصی کم ہو گئی ہے، اور مقامی بزرگوں کی مالی حالت کے بگڑنے کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ سلطنت کے نفوذ کا گھٹ جانا۔ روم انہی افراد کی مدد سے اپنے زیر نگرانی علاقوں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ روم کی طاقت کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ عالی مقام سجانوس، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل وتریوس اور میں نے اسی وجہ سے مجبوراً جنرل پلاتس کے تحت آنے والے علاقے میں مداخلت کی۔
ہماری اطلاع کے مطابق کئی برسوں سے فلسطین میں اس طرح کے سرفرے زاہدوں کا تانتا سا بندھا ہوا ہے۔ اس سلسلے کے آخری فرد یحییٰ تھے جن کو ہیرودس نے قتل کر ڈالا تھا، البتہ اس معاملے کو ہم نے سینٹ کی مجلس شورا میں اٹھایا تھا، اور تحقیق کے بعد واضح ہو گیا کہ کوئی سیاسی باغی نہیں تھے۔ اس بات کے بھی ثبوت ملے ہیں کہ وہ ایک فیض ضرر انسان تھے جن کی غذا شہد اور ٹڈیاں تھیں۔ اب جناب پروکنسول، آپ ہی بتائیں کہ حقیقت میں یہ آدمی کیا ہے؟
وہ یحییٰ کا رشتہ دار ہے، جلیل کا رہنے والا ہے، اور اس کا نام عیسیٰ ہے۔
وہی جسے قتل کر دیا گیا؟
کچھ لوگ انہیں عیسیٰ ناصری بھی کہتے ہیں۔ جب سے اس نے سر اٹھایا ہے روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اکثر یروشلم، یہودیہ اور جلیل کے علاقوں میں ہلچل مچی رہتی ہے۔
وہ کیا چاہتا ہے؟
وہ ایک خطرناک باغی ہے۔
باغی؟ کس طرح کا؟ سینٹ نے 2 مہینے پہلے ہی جنرل پلاتس کی درخواست پر اس شخص سے متعلق 2 خصوصی قانون وضع کیے تھے۔ کیا تمہاری نظر میں سینٹ اور سزانوز بھی باغی ہو گئے ہیں؟
گستاخی نہ سمجھے حضور، لیکن میری نظر میں وہ ایشیا کے سارے باغیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے باوجود آخری فیصلہ سینٹ کا ہوگا۔ سینٹ کے محترم صدر جناب کمودس اور آپ عالی مقام سجانوسی اس کا فیصلہ فرمائیں۔
بہت اچھا، آج کے بعد سے سلطنت کے مالی عہدیدار پوری سنجیدگی کے ساتھ یروشلم کی عبادت گاہ کی تمام آمدنی اور خزانوں کا پکا حساب لگائیں گے۔ اس کے علاوہ سینٹ بھی اس پر پوری نظر رکھے گی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ ناصری جب تک رومی شہنشاہیت اور اس کے زیر نگرانی فلسطین میں کوئی خلل اور پریشانی کو پیدا نہ کرے، سینٹ اور قیصر کی نظر میں وہ صرف ایک مذہبی جادوگر سمجھا جائے گا۔ وہ جو بھی چاہے اور جس طرح بھی چاہے اپنے جادو سے لوگوں کو تفریح فراہم کرے تو کرنے دو۔ اس علاقے کے بے کس لوگ آسمانی افکار میں جتنا زیادہ مگن رہیں گے رومی شہنشاہیت کے حق میں اتنا اچھا ہوگا، اگرچہ خود ان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا۔ شاید کبھی رومی شہنشاہیت کو عبرانی جادوگر کا شکریہ ادا کرنا پڑ بھی جائے تو۔ سینیٹر
جی حضور،
مجھے خوشی ہے کہ آپ اور سینٹ کے دیگر ارکان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ شہنشاہ تیبریوس آپ لوگوں سے راضی ہیں یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔
ڈرو نہیں زیلوت کے جان اساروں کے سردار، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عبادت گاہ کی سب سے محفوظ جگہ ہے، اس وقت ہمارے علاوہ کوئی اور اس جگہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ پریشان نہ ہو باراباس، تم ایک زیلوت ہو اور عوام کے بقول مقدس، جان اساروں کی انجمن کے رکن۔
میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آخر کار کاہنوں کی محترم شورا ہماری انجمن کو اس کے صحیح نام کے ساتھ یاد کرنے کو تیار ہو گئی۔
میں نے تمہیں پرانی باتوں کے شکوے سنانے کے لیے نہیں بلایا، بہتر یہی ہے کہ مطلب کی بات کریں۔ اگرچہ سخدرین کے تمام ارکان نے دستور کے مطابق تمہاری تائید نہیں کی ہے، لیکن ہمیشہ ہم نے دیگر ذرائع سے تمہاری حمایت کی ہے۔
مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے،
لیکن اب تو دلچسپی لینی پڑے گی، کیونکہ ہم دونوں کا ایک مشترک دشمن ہے۔
تمہارا مطلب عیسیٰ ہے؟
بالکل ٹھیک۔ اچھا بتاؤ اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ دراصل میں تمہارا نظریہ جاننا چاہتا ہوں، تہے دل سے جاننا چاہتا ہوں یہ سب، بولو۔
انجمن کا اس سے کوئی تعلق نہیں، उसके आते ही हमारे अरकान में तफरके का बीज पड़ गया, यहाँ तक कि हमारे कुछ आदमी उसके पैरों हो गए।
अजीब है, अजीब। उनको रोका क्यों नहीं गया?
कोई फायदा नहीं था, उनके दिमाग को खराब कर दिया गया था। नासरी जादू करता है, मैं साबित कर सकता हूं कि वो जादू करता है, वरना वो जो काम करता है वो सब नामुमकिन है। यही अभी नबी थे, लेकिन उन्होंने किसी मौजजे का दावा नहीं किया।
उसके बारे में और क्या जानते हो?
यरूशलम में रोजाना किसी न किसी जगह फितना खड़ा कर देता है। उसकी बातें जलील की सरहदों से आगे निकल चुकी हैं। यरूशलम में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उसके वास की और उसके शिफा देने की बातें ना हो रही हो। जैसे लोगों को पता चलता है कि ईसा नासरी यरूशलम में दाखिल हो रहा है, वैसे ही लोग दीवानावार अपने मरीजों को उठाकर ईसा नासरी के पास ले जाते हैं। क्यों? ताकि जलील का झूठा पैगंबर उनकी तंदुरुस्ती का सबब बने। मुझे आवाम की खुराफात परस्ती से कोई मतलब नहीं है। जिस चीज ने मुझे पागल कर दिया है वो शख्स की कुफर भरी बातें हैं। कुफरियात?
कुफरियात?
वो कहता है कि आखिरी जमाने में जो पैगंबर आएगा वो तमाम उम्मतों की निजात के लिए आएगा। उसकी दावत यहूदियों से मखसूस नहीं होगी। काहिन साहब, क्या आपकी नजर में ये कुफर नहीं है? माशाल्लाह, आप तो पाबंदे शरीयत हैं, आप उसे क्या कहेंगे?
ये तो खास बात नहीं, उसने तो इससे भी बदतर कहा है। हमें यानी हारून के जानशीनों और मूसा की शरीयत के खादिमों को, सखदरीन की मुकद्दस शूरा को, 71 पारसा काहिनों को नागजादों का लकब दिया है, सुलेमान की मुकद्दस इबादत गाह का नाम चोरों और शैतीन का गार रखा है। क्या ये तुम जैसे बाइज्जत जानिसार या बाइज्जत जैलूद की तौहीन के लिए काफी नहीं है? क्या तुम मूसा की उम्मत के मुहाफिज नहीं हो? क्या तुम जैलूद लोग ये नहीं कहते थे कि इसराइल की उम्मत एक मसीहा की आमद की मुंतजिर है, कि जिसके आने से अग्यार के शर से निजात मिलेगी? क्या तुमने उनके अकायद के लिए खुद को खतरे में नहीं डाला और रूमियों का कत्ल नहीं किया? क्या अब तक तुम्हें इसका कुछ फायदा हुआ? बोलो, बताओ मुझे कि तुम्हें इसका कोई फायदा हुआ?
पता नहीं।
तुम्हें पता नहीं? लेकिन मैं सब जानता हूं। इससे बेहतर रास्ता भी है बाराबास। इस वक्त तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है। तुम और तुम्हारे साथी इन्हीं इलाकाई लोगों के साथ मुनासिब मौके की तलाश में रहो। शायद लोग कुछ दिन उस नासरी के शैतानी हथकंडों के जादू में आ जाएं। पहले मरहले में तो तुम लोग दर पर्दा उस आदमी से मुकाबला करो। जैलूत अफवाहों की ताकत को हल्का मत समझो, मगर शर्त यही है कि अपने खंजर की ताकत की तरह से ही इस हुनर से भी अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ।
किस तरह की अफवाहें?
उसकी जड़ तक जाओ और उसके असली हस्बो नस्ब को देखो। उसकी विलादत के वाकये पर उंगली उठाओ हर चीज से अच्छी तरह फायदा उठाओ, लेकिन बहुत एहतियात बरतनी होगी। लोगों को खबर नहीं होना चाहिए कि तुम ही उन अफवाहों को फैला रहे हो। अल-मुख्तसर की इन अफवाहों से उसके तरफदारों में फूट डाल सकते हो। अफवाहों के लिए जरूरी नहीं कि उसके खिलाफ ही हों, बल्कि मनफात भी हो सकती हैं। दोनों सूरतों में मुबालगा आराई से काम जरूरी है।
लेकिन कायन साहब, मुमकिन है कि ये मुख्तलिफ बातें फायदे के बजाय हमारे नुकसान का सबब बन जाए।
नहीं नहीं नहीं, ईसा को एक आम इंसान की हद से ऊपर ले जाओ, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना बाराबास?
थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है।
ये एक मामूली दुश्मन से मामूली जंग नहीं है, ईसा बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें मौके की नजाकत से फायदा उठाना चाहिए और जरूरत के मुताबिक एक साथ रूमी और आवाम की आवाज में आवाज मिलाकर चारों तरफ से उस नाग पर हमला कर देना चाहिए।
ऐसी सूरत में तो हम आपके हुक्म के ताबेदार हैं रुबीन साहब।
जहां तक हो सके बाराबास, लोगों के दरमियान उस नासरी के मुतालिक अफवाहें फैलाओ। जल्दबाजी में खून खराबे की जरूरत नहीं है। अपने खंजर को नियाम में रख लो, वो लोग खुद ही एक दूसरे पर तलवारें उठा लेंगे। अपने काम के इखराजात की फिक्र ना करो, हम तुम्हारे जरूरी इखराजात को पूरा करेंगे। मेरा मतलब समझ रहे हो ना बाराबास? तुमने समझा मैंने क्या कहा बाराबास? ज़ैलूत, याद रखो, हमें और तुम्हें उस दिन से डरना चाहिए कि जब उसकी आवाज यहूदिया की सरहदों से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के लोगों के कानों तक पहुंच जाएगी। उस वक्त ना हम बचेंगे और ना ही तुम।